भारतीय आधुनिकता, आधुनिकता के विकास का इतिहास स्पष्ट रूप से अनेक बातों, परिवर्तनों, विचारों, स्थापनाओं, असंगतियों और अंतर्विरोधों की ओर इशारा करता है। उपयुक्त इतिहास में यूरोप का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि यूरोप ही आधुनिकता का जन्मदाता और प्रसारक है। यह संभवतः एक हद तक तथ्यात्मक सत्य भी है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि दुनिया के अनेक समाज अपने तरीकों से विकसित हो रहे थे। इनमें भारत सहित एशिया के वे राष्ट्र भी शामिल हैं जो अपने दर्शनों, विज्ञान, विचार प्रणालियों, सुसंगत व्यवस्थाओं, व्यापार प्रणालियों, तकनीकी और कलात्मक उपलब्धियों और धर्म संगठनों के लिए प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व में मान्यता प्राप्त थे। ये प्रत्येक दृष्टि से उन्नत समाज थे। यह विश्वास करना उचित ही है कि अपने विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया में ये क्रमशः मध्यकालीनता से संघर्ष करते और अपनी जरूरतों के मुताबिक आधुनिकता का विकास करते। यह आधुनिकता पूरी तरह उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास का प्रतिबिंब होती, जिसमें उसकी स्थानीयता और देशीपन का रंग साफ साफ नजर आता। यूरोपीय राष्ट्रों में विकसित पूंजीवाद और आधुनिकता मुख्यतः उपनिवेशवाद के साथ संयुक्त होकर इन राष्ट्रों में पहुंची, जिसमें औपनिवेशिक शोषण का लक्ष्य भी सर्वोपरि रहा। औपनिवेशिक प्रभुत्ता की पूंजीवादी नीतियों ने इन राष्ट्रों के स्वाभाविक रूप से विकसित होते पूंजीवाद पर गहरा आघात किया, राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचला और स्थानीय अर्थतंत्र को विकलांग बना दिया। इससे इन समाजों की स्वाभाविक वैचारिकता कुंठित हुई। स्थानीय समाजों के ताकतवर वर्ग के औपनिवेशिक प्रभुत्ता के साथ वे गठजोड़ों ने उन्हें शेष समाज से काट दिया। औपनिवेशिक स्वार्थों ने इन समाजों में नए तरह की अधिरचना का विकास किया, जो प्रकृतिया तो आधुनिक थी परंतु ऊपर से थोपे जाने के कारण स्थानीय समाज उसके पीछे छिपी वैज्ञानिकता, तार्किकता, बुद्धि संगत वैचारिकता से प्रभाव हासिल न कर सका। स्थानीय समाज का ऊपरी तबका उपनिवेश तंत्र से स्वभाव की नीति पर चला, जिससे उसमें एक हद तक आधुनिकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। इस प्रक्रिया में वह स्थानीय जनता को सांस्कृतिक रूप से भी दूर होता चला गया। स्वाभाविक है कि उच्च वर्ग की यह नव अर्जित आधुनिकता में यूरोपीय जीवन शैली भी मिल जाती थी, जिससे पश्चिमीकरण प्रारंभ हुआ। स्थानीय समाज में इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझने और कभी कभी कठोरता पूर्वक पकड़े रहने का आग्रह बढ़ा। संस्कृति के इस आग्रह ने इतिहास अध्ययन को प्रभावित किया। इससे परस्पर दो तरह की विपरीत विचार प्रणालियों ने जन्म लिया। एक और जहाँ इतिहास की नई समझ ने सामाजिक जकड़नों से मुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की, और एक तरफ के समावेशी तथा नए के विवेकीकरण एवं विवेकपूर्ण स्वीकार पर टिकी हुई खुली वैचारिकता को प्रोत्साहित किया, तो वहीं दूसरी ओर संस्कृति के नाम पर भेद, जड़ता और बंद दिमागी को प्रोत्साहित करने वाली मध्यकालीन और सामंती सामाजिक और वैचारिक पद्धतियों के सायास पुनः उभार को बल मिला। इसने समाज में मध्यकालीनता को प्रोत्साहित करने वाली पुनरुत्थानवादी शक्तियों के उभार में बड़ी मदद की। ज्यादातर औपनिवेशिक राष्ट्र आज भी धर्म और संस्कृति के आधार पर विकसित पुनरुत्थानवादी सामाजिक समूह और विचारधाराओं से संघर्ष कर रहे हैं। स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद ने जहां एक ओर पश्चिमी आधुनिकता के प्रसार में मदद की, वहीं दूसरी ओर पुनरुत्थानवादी आधुनिकता के विकास की परिस्थितियां पैदा की। भारतीय आधुनिकता के विकास को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा सकता है। भारत विविधताओं का देश है। धर्म, भाषा, वर्ण, जातियाँ, उपजातियाँ, स्थानीयताएं, इनके एक समुच्चय से देश की रचना होती है। भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक सांस्कृतिक अतीत की विविधता के कारण यहाँ समाज में रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म विधि, सामाजिक संस्थाओं, आचार पद्धतियों, विधि, गीत संगीत की परस्पर भिन्न और विपरीत धाराएं एक साथ मौजूद हैं। स्थानीय संस्कृतियों की विभिन्नता इस समाज की एक बड़ी विशेषता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी यहाँ एक समाज के अंग के रूप में रहते आए हैं। एक बड़ी जनसंख्या ऐसी जनता की है जो इनमें से किसी धर्म को नहीं मानती। भारत के आदिवासी, अत्यंज और अवर्णजन ऐसे ही हैं। किसी एक धर्म के धर्मावलंबियों में भी आपस में हजारों भेद मौजूद हैं। बंगाली हिंदू, कश्मीरी हिंदू, तमिल हिंदू अनेक मामलों में एक होते हुए भी एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। स्थानीय संस्कृति, वैचारिकता और संप्रदाय की विभिन्नताएं इन्हें एक दूसरे से अलग रखती हैं। हिंदू धर्म स्वयं विभिन्नताओं का समुच्चय है। सनातनी, शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथ, कबीरपंथी, रामानुजी, पल्लवी, प्रणामी, आर्य समाजी, ब्राह्म समाजी, प्रार्थना समाजी विभिन्नताओं के कुछ उदाहरण मात्र हैं। मुसलमानों में भी अनेक प्रकार के भेद हैं। सिया, सुन्नी, शेख, सैयद, पठान, जुलाहे, अंसार, चिश्तिया, कादरिया, नक्सबंदिया, जिलानिया आदि। गोरखपुरी मुस्लिम और मालाबारी मुसलमान कुछ धार्मिक विश्वासों में एक होते हुए भी अनेक स्तरों पर एक दूसरे से अलग होते हैं। विभिन्नताओं के अन्य आधार आर्थिक हैं, संपत्ति स्तर, कुलीनता, गांव, शहर और पेशों के भेद भी पर्याप्त दृढ़ हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है, यह इसकी विशिष्टता है। ऐसे महादेश में आधुनिकता का एक ही प्रारूप हो यह संभव नहीं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इन भिन्नताओं ने अपने ढंग से प्रभाव डाले हैं। भारत में आधुनिकता का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ है। आधुनिकीकरण के प्रति समाज के विभिन्न समुदायों का रवैया भिन्न रहा है। उदारवादी उच्च वर्ग ने इसका स्वागत किया है तो अनेक समुदायों ने या तो इसकी उपेक्षा की है या इसका विरोध किया है। समाज के अनेक हिस्से ऐसे भी हैं जहां आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अनेक कारणों से बड़ी देर से प्रारंभ हो सकी है। अनेक बार इसमें सदियों का फासला भी पाया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक भिन्नताओं के कारण आधुनिकता के अलग अलग मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न समुदायों में भिन्न प्रतिक्रिया हुई है। इन सब कारणों से भारतीय आधुनिकता खंडित है या लचीली समावेश आधुनिकता है, जिसमें अनेक बार अनाधुनिक परंपराओं के प्रति गहरा आकर्षण देखा जाता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। भारतीय समाज में आधुनिकता अभी भी एक अधूरी परियोजना है। भारतवर्ष में आधुनिकता के उदय का सीधा संबंध सामंती रजवाड़ों की पराजय और औपनिवेशिक ताकतों के हिंदुस्तान की राजसत्ता पर प्रभावी होने से माना जाता है। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल में नवाब की पराजय और अंग्रेजों की विजय हुई। धीरे धीरे देश अन्य हिस्सों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व होता चला गया और अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मिली विजय के उपरांत भारतीय राजसत्ता पर सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी का प्रभुत्व हो गया। लगभग 100 वर्षों के इस सत्ता संघर्ष में अंग्रेजों ने अनेक ऐसी व्यवस्थाएं प्रारंभ की जिन्होंने हिंदुस्तान उच्च वर्गीय समाज को सीधे सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के साथ द्वंद्वपूर्ण संबंध के बावजूद उच्च वर्गीय भारतीय जनता के धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ आए नए विचारों, नई वैज्ञानिक चेतना, अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार करना प्रारंभ किया। वस्तुतः 1757 से 1857 का यह समय जीवन के विविध क्षेत्रों में आधुनिकता के उदय की पृष्ठभूमि निर्मित करने वाला समय है। संभवतः इसलिए यहाँ से देश में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। उपयुक्त वर्णन से यह आभास होता है कि अंग्रेजी राजसत्ता के हिंदुस्तान में आधुनिकता के उदय के कारण बनी, परंतु यह कहना ठीक न होगा कि यदि अंग्रेज हिंदुस्तान में न आते तो भारतीय कभी भी आधुनिक नहीं हो सकते थे। ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुसार विश्व में उदित हो रही नए जीवन दृष्टि, नए बोध और नवीन विचार हिंदुस्तान में आते, यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के आगमन ने इस प्रक्रिया में सक्रिय उत्प्रेरक का कार्य किया। 1853 में प्रकाशित एक आलेख में कार्ल मार्क्स ने लिखा था, यह सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया था उसके पीछे उसके निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दृष्टतापूर्ण था, पर प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य जाति एशिया के मौलिक व्यवस्थाओं में सामाजिक क्रांति हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है। यदि नहीं तो इंग्लैंड ने जो अपराध भी किए हैं, परंतु इस क्रांति को लाने में वह अनजाने ही इतिहास का हथियार बन गया। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक व आर्थिक हितों तथा औपनिवेशिक सत्ता की रक्षा और बढ़ोतरी के लिए भारत की पुरातन उत्पादन पद्धति को तहस नहस कर डाला। स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे देसी पूंजीवाद पर कुठाराघात किया, देश की आर्थिक संपन्नता को लूट लिया, परंतु साथ ही इन्होंने आधुनिक शिक्षा द्वारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया। संपूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी कानून व्यवस्था लागू की, भूमि का नया प्रबंध किया, विद्यालय, महाविद्यालय, छापाखाना, रेल, डाक तथा तार का जाल बिछवाया। ब्रिटेन में भारतीयों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, जिसने भारतवर्ष में नवजागरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। 1835 में मैकॉले द्वारा स्वीकृत अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने शैक्षिक विकास की प्रक्रिया को बल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के हाथों हुए ढांचागत विकास के पीछे भारतीय जनता की भलाई का लक्ष्य न था, पर ऐतिहासिक प्रक्रिया के अपने नियमों से यह अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह कर रहा था। कार्ल मार्क्स का यह विश्वास उचित ही था कि जनशक्ति इसके परिणाम को उलट भी सकती है। अंग्रेज पूंजीपति वर्ग ने भारतवासियों के बीच नए समाज के जो बीज बिखेरे हैं, उनके फल भारतीय तब तक नहीं चख सकेंगे जब तक कि स्वयं ब्रिटेन आज के शासक वर्गों का स्थान औद्योगिक सर्वहारा न ले ले, या जब तक कि भारतीय स्वयं इतने शक्तिशाली न हो जाएं कि अंग्रेजों की गुलामी के जुए को एकदम उतार फेंके। भारतीय जनता पर 1853 में जताया गया यह विश्वास उचित ही था। हम देखते हैं कि भारतीय तंत्र पर पर अंग्रेजों के धीरे धीरे कस रहे शिकंजे के विरुद्ध जन विद्रोह पहले से ही लगातार जारी थे। 1763 के बाद बंगाल और बिहार में सन्यासियों का विद्रोह, किसानों के विद्रोह, भू स्वामियों के विद्रोह, आदिवासियों के विद्रोह, सैनिक विद्रोह, इन विद्रोहों में स्थानीयता से बाहर निकलने की शक्ति न थी, परंतु ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों में पनप रहे असंतोष की अभिव्यक्ति करते थे। इस श्रृंखला में 1857 का महाविद्रोह है जिसने भारत को एक नई करवट दी। इस विद्रोह में भारतीय जनता के बड़े वर्ग में संगठित और श्रृंखलाबद्ध होकर ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके समर्थक स्थानीय रजवाड़ों और जमींदारों की सैन्य शक्ति और आक्रामक प्रतिहिंसा का मुकाबला किया। किसान, दस्तकार, स्थानीय सामंत और सिपाही मिलकर लड़े। हिंदुओं और मुसलमानों की एकजुटता ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लगभग 20 महीने तक किसी न किसी रूप में यह संघर्ष चलता रहा, जिसमें अंततः भारतीय जनता और वीर विद्रोही सामंतों और सेनानायकों की पराजय हुई। इसने आगे के वर्षों में भारतीय जनता को एक सूत्र में बांधने और स्वाधीनता के लिए उत्प्रेरित करने का कार्य किया। विद्रोह की श्रृंखला रुकी नहीं, आगे भी विद्रोह जारी रहे। किसानों के विद्रोह, आदिवासियों के विद्रोह जारी रहे। आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय चेरी छोड़ना होइबे रानी की मध्यकालीन भावना से संचालित थे। ये विद्रोह यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता सत्ता से उस तरह असंपृक्त न थी जैसे कि धारणा है। भारतीय समाज में मध्यकालीनता और आधुनिकता के द्वंद्व को तीव्र करने में 1857 की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1857 के विद्रोहियों ने भारत में पहली बार एक राजनीतिक प्रयोजन के लिए स्थानीय नागरिकों का एक ऐसा गठबंधन बनाने का प्रयास किया जो स्थानीयताओं से परे राष्ट्रीय शक्ल ले रहा था। इसमें राजा, सामंत, सेनानायक जैसे सामंती प्रभु और किसान, दस्तकार जैसे साधारण नागरिक तथा सिपाही शामिल थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू और मुसलमानों की एकता। इनमें एक धर्मनिरपेक्ष ताजा निर्मित करने के परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रयासों के बीच देखे जा सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रायः सभी स्थानों के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। लखनऊ के एक घोषणा पत्र में कहा गया, सभी हिंदू और मुसलमान ये जानते हैं कि चार ऐसी चीजें हैं जो हम सबको समान रूप से प्रिय हैं। ये हैं धर्म, आत्मसम्मान, जीवन और संपत्ति। इनकी रक्षा एक राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत ही हो सकती है। बहादुर शाह जफर ने घोषणा की, यह पवित्र युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ है। मैं आज्ञा देता हूँ कि इसे हिंदुओं के खिलाफ नहीं मोड़ा जाएगा। दूर बैठे कार्ल मार्क्स ने भी इस सांझे को अंकित किया। 30 जून 1857 को उन्होंने लिखा, भारतीय सेना में इससे पहले भी बगावतें हुई थी, किंतु वर्तमान विद्रोह की अपनी विशेषताएं हैं और अपने आघात और घातक लक्षणों के कारण यह उससे भिन्न है। यह पहली बार है कि जब सिपाहियों के रेजिमेंटों ने अपने यूरोपीय अफसरों की हत्या कर दी है, जब अपने आपसी विद्वेषों को भूलकर मुसलमान और हिंदू समान रूप से अपने सामान्य स्वामियों के खिलाफ एक हो रहे हैं। यह साझेदारी एक ऐसा पहलू है जिसने परवर्ती राष्ट्रीय एकीकरण और स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक में उग्रवादी संप्रदायवाद के उदय के बावजूद भारत का अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व 1857 की तरह एक साझा राष्ट्रीय आंदोलन और एक साझी राष्ट्रीय सरकार को सिद्धांततः स्वीकार करते हैं। 1857 के महाविद्रोह ने भारतीय जनता की शक्ति का प्रकटन किया। भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आने के बाद सबसे पहले ऐसी नीतियां अपनाई गईं जिनसे जनता और सामंती प्रभुओं के गठबंधन को तोड़ा जा सके। ब्रिटिश सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाते हुए सबसे पहले रजवाड़ों के शासन को मान्यता दी एवं उनके राज्यों में हस्तक्षेप न करने का भरोसा दिलाया। परिणाम स्वरूप 1857 के बाद रजवाड़ों ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रायः भाग नहीं लिया। भारतीय सामंती शक्तियों और औपनिवेशिक प्रभुओं के बीच एक गठजोड़ निर्मित हुआ। इससे परिवर्ती राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष यह बात प्रायः स्पष्ट रही कि स्वाधीनता आंदोलन के लक्ष्य सामंतवाद और उपनिवेशवाद दोनों के विरुद्ध समान रूप से संघर्ष चलाना होना चाहिए। इसने पुराने सामंतों के प्रति संघर्ष को गति दी। विशेष रूप से किसानों ने यह संघर्ष किए। इन संघर्षों ने साधारण किसान जनता में आधुनिकता की नींव डाली। किसान आंदोलनों में ऐसे नेता उभरे जिन्होंने इन संघर्षों के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया। उपनिवेशवाद सामंतवाद के विरुद्ध व्यापक संघर्षों ने ही भारतीय आधुनिकता को आकार दिया। इन संघर्षों का संवेद और तेजस्वी रूप स्वतंत्रता आंदोलन कहलाया। भारत में आधुनिकता के प्रारंभिक प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कारकों में सामंतवाद उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष की भूमिका सर्वोपरि है। अन्य कारकों में उपनिवेशवाद की जरूरतों के कारण हुए अधिरचनात्मक विकास, भारतीय पूंजीवाद का उदय, नवीन शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षितों और अंग्रेजों की ज्ञानात्मक अंतरक्रियाएं, नवजागरण आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करने वाली और एक दूसरे से प्रभावित होने वाली भिन्न शक्तियों की ओर संकेत करने वाले कारक हैं। भारतीय आधुनिकता औपनिवेशिक युग में आकार लेती है, इस कारण अनेक विद्वान इसे औपनिवेशिक आधुनिकता निरूपित करते हैं। अंग्रेजों के व्यापक प्रभाव की वजह से अनेक दूसरे विद्वान इसे पश्चिमी आधुनिकता या यूरोपीय आधुनिकता का अनुगामी मानते रहे हैं। दोनों ही विचार ऊपरी तौर पर तथात्मक और ऐतिहासिक दिखने के बावजूद उचित नहीं है। भारतीय आधुनिकता के प्रारंभिक उन्नायकों राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, मिर्जा गालिब, भारतेंदु, दादाभाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण गुरु, राजा रवि वर्मा, बालमुकुंद गुप्त और उसके विस्तारकों रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, M.N. राय, राधा कुमुंद मुखर्जी, प्रेमचंद, भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, अलाउद्दीन खां, जेमिनी कृष्णमूर्ति, अमृता शेरगिल, उदय शंकर, सुब्रणियम भारती, निराला प्रसाद, आगा हर्ष कश्मीरी, रमाबाई पंडिता, श्रुति मोहन सेन, सहजानंद सरस्वती, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, अनिल विश्वास, चेतनानंद, PC बरुआ और देविका रानी के कार्यों और विचारों का अध्ययन और मूल्यांकन करके इसे समझा जा सकता है। भारतीयों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में यूरोप में उदित आधुनिकता से प्रभाव प्राप्त किए हैं, परंतु उन्होंने उन्हें भारतीय परंपरा के जीवंत और सृजनशील धाराओं के परिप्रेक्ष्य में प्रायः पुनः आकारित किया है। भारतीय परंपरा की व्याख्याएं यद्यपि अलग अलग और अनेक बार समस्याग्रस्त हैं, परंतु इतना स्पष्ट है कि भारतीय जन आधुनिकता को प्रश्नांकित और परंपरा से संबंध किए बगैर नहीं अपना रहे थे। इस प्रक्रिया ने अनेक जगहों पर आधुनिकता के सकारात्मक मूल्यों को अपनाने के रास्ते में बाधाएं भी डाली। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, भेद और जड़ता तथा असमानता और अंधविश्वासों को प्रोत्साहन देने वाली धर्म रीतियों और सामंती व्यवस्थाओं और पुरुषसत्तात्मकता को भारतीयता की पहचान के रूप में देखने वाले भारतीयों ने आधुनिकता की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और जनतांत्रिकता की परियोजनाओं को आकार लेने से रोकने में अपनी शक्ति खर्च की। इन समस्याओं के बावजूद ये परियोजनाएं आगे बढ़ी, क्योंकि भारतीय सामाजिकता, समाज संरचना, परंपरा और अतीत की स्मृतियों में ऐसे तत्व अंतर्निहित थे और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उनकी साफ पहचान की गई, जो स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों का स्पष्ट समर्थन करते थे। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करते हुए जो विचार रखे और उन विचारों के अनुकूल जिन सामाजिक उपकरणों की खोज की, उनके पूर्व रूप भारतीय अतीत में मौजूद थे। भीमराव अम्बेडकर के विचार भारतीय परंपरा की कठोर व्याख्या करते थे। दलित अधिकारों का प्रश्न उठाते हुए वे एक भारतीय परंपरा की ताकतवर आलोचना कर रहे थे, तो दूसरी परंपरा इस कार्य में उपयोग कर रहे थे। बौद्ध हो जाने के उनके निर्णय में भी आधुनिकता की यह भारतीयता स्पष्ट रूपायित होती है। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक हितों को स्थायी बनाने के लिए जिस रणनीति को अपनाया, उसमें अधिरचना का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता था। व्यापार, सेना और प्रशासन के लिए उन्होंने रेलों, भाप के जहाजों और संचार व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसने भारत के भौगोलिक अलगावों को खत्म करने और राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में भारतीय पूंजीपतियों ने इन साधनों का प्रयोग पूंजीवाद के विकास के लिए किया। कहना ना होगा कि नवजागरण और स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं ने अपनी परियोजनाओं में का व्यापक प्रयोग किया। इन साधनों ने कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ा। गरीब, भूमिहीन मजदूर, शिल्पी और दलित औद्योगिक मजदूरों के एक नए वर्ग के रूप में उभरने लगे। इसने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और जन्माधारित पुस्तैनी श्रम विभाजन के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ की। भारत में बाजारों के विकास में इस अधिरचना ने महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत के तटवर्ती इलाकों, प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्रों में उभरी और ताकतवर हुई आधुनिकता के पीछे अंग्रेजों द्वारा विकसित अधिरचना की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके कारण ऐसे केंद्रों पर बनी नई बस्तियों में अगले ही क्रम में नए ढंग की शिक्षा का विकास हुआ, जिसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इन्हीं केंद्रों में भारतीयों द्वारा संचालित उद्योग धंधों का विकास हुआ। आधुनिक भारत का इतिहास हमें बतलाता है कि इससे कमजोर ही सही पर देसी पूंजीवाद का विकास हुआ, जिसने आगे ताकतवर होने पर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सार्थक भूमिका निभाई। अधिरचना का विकास करते हुए भी अंग्रेजी राज भारतीय उद्योग धंधों को सुदृढ़ होने नहीं देना चाहता था, इसलिए इस रास्ते में उन्होंने लगातार अड़चनें खड़ी की। केवल उन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उपांग की तरह कार्य करें। इन्हीं कारणों से भारतीय पूंजीपति और भारतीय उच्च वर्ग प्रायः अंग्रेजों से सहयोग की नीति पर चलने के लिए मजबूर थे। भारतीय परंपरा के अपने आग्रहों और मध्ययुगीन सामंती समाज रचना के दबाव भी इन पर थे ही। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में नए ढंग की शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली। इस शिक्षा का लक्ष्य भारतीयों में अंग्रेज समर्थक दुभाषिक वर्ग पैदा करना तथा भारतीयों में हीन भावना पैदा करना था। मैकॉले ने स्पष्ट रूप से लिखा है, हमें इस समय एक ऐसा वर्ग पैदा करने में अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषीय का काम कर सके। ऐसे लोगों का एक वर्ग जिनका रक्त और रंग भारतीय हो किंतु जो रुचि विचारों नैतिकता और बुद्धि के दृष्टि से अंग्रेज हो। भारतीयों में भारतीय ज्ञान परंपरा से अलगाव पैदा करके ही यह काम किया जा सकता था। इस शिक्षा प्रणाली के निर्माताओं को अपने ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिकता का दंभ था। वे मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उसमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगा। एक हद तक यह हुआ भी, परंतु आगे के वर्षों में शिक्षा व्यवस्था ने ऐसे स्वतंत्र शिक्षित वर्ग को जन्म दिया जिसने भारतीय ज्ञान भारतीय सामाजिकता दर्शन साहित्य और कला रूपों पर विस्तृत अध्ययन किया। इन्हीं में से कुछ अध्येताओं ने ही प्राचीवाद और भारतीय विद्या की नींव डाली। ठीक तौर पर इस धारा में न आने वाले विचारक भी बड़ी संख्या में उभरे। इन अध्येताओं और कार्यकर्ताओं ने नव जागरण और स्वतंत्रता संघर्ष को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया और उन्होंने भारतीयों में हीन भावना के विकास को रोका और आत्मसम्मान की भावना जगाई। भारतीय जनता को सदैव के लिए गुलाम और पिछलग्गू बनाने की रणनीति से लागू की यह शिक्षा प्रणाली ने एक और उन्हें यूरोप में विकसित ज्ञान के प्रति विवेकशील बनाया, वहीं भारतीयों को अपनी विरासत के प्रति जागरूक बनाया। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी की प्रश्नाकुल आत्मलोचना का विकास हुआ या भारतीय चेतना को जगाने का कारण बन गई। के दामोदरन ने उचित ही लिखा है, ब्रिटिश शिक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों के सामने सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता के नए क्षितिज उद्घाटित किए। शिक्षित भारतीयों ने एक और तो दूसरे देशों के प्रगतिशील विचारों और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की सराहना करना सीखा और दूसरी ओर नए ज्ञान की कसौटी पर स्वयं अपनी परंपराओं, धर्म दर्शन रीति रिवाजों और रुचियों को कसना सीखा। मैकॉले ने सोचा था कि उनकी शिक्षा प्रणाली भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को कुंठित कर देगी और उन्हें वफादार गुलाम बनाने में सफल होगी, किंतु उसने दरअसल जीवन के प्रति एक नए वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु का आधार तैयार किया और नए राष्ट्रीय जागरण में भी सहायता पहुंचाई। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग पैदा किया जो पश्चिमी विज्ञान के मूल तत्वों तथा पश्चिम के अधिक उन्नत सांस्कृतिक मानदंडों को समझते और आत्मसात करते थे और साथ ही स्वयं अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए उनका उपयोग करते थे। अंग्रेजी शिक्षा का महत्व इस बात से प्रमाणित होता है कि भारतीय नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व करने वाले अधिकांश विचारक और नेता इसी का हिस्सा बनकर शिक्षित हुए थे। अंग्रेजी शिक्षा, प्रशासन और व्यापार ने अंग्रेजों और शिक्षित उच्च वर्गीय भारतीयों के मेलजोल की परिस्थितियां पैदा की। इन्होंने भारतीय अतीत और संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। बड़ी मात्रा में भारतीय पुस्तकों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए। विदेशी अध्येताओं की रुचि भारत अध्ययन में जागी। परिणाम स्वरूप प्राचीवाद और भारत विद्यावाद की नींव पड़ी। मेलजोल की इस प्रक्रिया से नवजागरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला। राजा राम मोहन राय जैसे नेताओं के विचारों के निर्माण में इसकी गहरी भूमिका थी। भारतीय नवजागरण ने भक्ति आंदोलन के लोक जागरण की शिथिल पड़ गई प्रक्रिया को तीव्र किया। नवजागरण के नेताओं ने यूरोपीय आधुनिक विचार को वैज्ञानिक दार्शनिक तथा सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और भक्ति आंदोलन के कवि नानक चैतन्य नामदेव तुकाराम आदि कवि विचारकों से समान रूप से प्रेरणा प्राप्त की। भक्त कवियों के रास्ते प्रायः वे निर्गुण ब्रह्मवाद और सामंतवाद तक पहुँचे। इन कवियों ने उन्हें वेदांत से जोड़ा जिसका उन्होंने प्रायः स्वतंत्रता और समानता की अपनी परियोजना में उपयोग किया। वे धर्मतंत्र रूढ़िवाद और भेद के खिलाफ कबीर और तुकाराम की तरह तार्किकता एकता से खड़े हुए भारतीय नवजागरण में धर्म का प्रश्न उसी तरह महत्वपूर्ण बना रहा जैसे कि वह उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन में था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज आदि समूहों के निर्माण में कबीर पंथ, सिख पंथ, दादू पंथ की तरह संस्था का धर्म से अलग हटने की प्रवृत्ति साफ तौर पर मौजूद थी। नवजागरण के नेताओं के सामाजिक और राजनीतिक विचार भी कहीं न कहीं धर्म के पुनर्व्याख्या से जुड़ जाते थे। ऐसा भी लगता है कि भारतीय आत्मसम्मान की खोज उसके विकसित धर्मों और धार्मिक विचारों पर जाकर टिक जाती थी। परिणाम यह हुआ कि एक और नवजागरण ने संस्थागत धर्म की सत्ता को चुनौती दी, धार्मिक रूढ़िवादिता और धार्मिक वर्चस्ववाद पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उसकी पुनर्व्याख्या की तो दूसरी ओर से नए प्राय धार्मिक ढंग के समूहों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया तथा वह सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में धर्म की भूमिका को प्रोत्साहित करने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के विचारों के अध्ययन से इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद वीसी पाल, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के विचारों, कार्यनीतियों, रणनीतियों और आंदोलन में इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित पुनरुत्थानवाद और सांप्रदायवाद को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। भारतीय नवजागरण के नेताओं में तर्क, बुद्धि संगतता, जनतांत्रिकता और वैज्ञानिकता की स्पष्ट झलक मिलती है। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रायः समर्थन किया। उनके विचारों और कार्यों से मध्यकालीनता के विरुद्ध एवं संघर्ष शुरू हुआ। धर्म संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक धर्म विधियों और अंधविश्वासों पर उन्होंने कड़ा आक्षेप किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध तथा स्त्री एवं दलित शिक्षा, विधवा विवाह तथा अंतरजाति विवाह का समर्थन किया। उनमें से अनेक ने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और धार्मिक वैमनस्य की निंदा की। उन्होंने आधुनिक समाज की रचना कर सकने वाली नई नैतिकताओं और आदर्शों की प्रस्तावना की। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने अनेक मध्ययुगीन विश्वासों को समाज से मिटाने के लिए आधुनिक न्याय व्यवस्था का सहारा लिया। इस तरह कानून को धर्म संगठन के ऊपर स्थापित किया। अनेक विचारक और नेता साधारण जनता के सामाजिक और आर्थिक शोषण के सवालों को प्रमुखता से उठा रहे थे। इस तरह उन्होंने उपनिवेशवाद और सामंतवाद द्वारा चलाई जा रही शोषण प्रक्रिया का भी न सिर्फ खुलासा किया बल्कि विरोध भी किया। दादाभाई नौरोजी और विवेकानंद के विचारों को इस श्रृंखला में देखा जा सकता है। विवेकानंद का स्पष्ट मानना था कि गरीबों के लिए काम की व्यवस्था करने के लिए भौतिक सभ्यता की, यहाँ तक कि विलास बहुल्य की आवश्यकता है। रोटी रोटी मैं यह नहीं स्वीकार करता कि जो ईश्वर मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। भारत को ऊपर उठाया जाना है, गरीबों की भूख मिटानी जानी है, शिक्षा का प्रसार किया जाना है, पंडो पुरोहितों को हटाया जाना है। हमें पंडे पुरोहित नहीं चाहिए, हमें सामाजिक आतंक नहीं चाहिए, हरेक के लिए रोटी, हरेक के लिए काम की अधिक सुविधाएं चाहिए। भूख और निर्धनता का प्रश्न उन्होंने अनेक बार उठाया। वे हमसे रोटी मांगते हैं लेकिन हम उन्हें पत्थर देते हैं। भूख से पीड़ित जनों के गले में धर्म उड़ेलना उनका अपमान करना है। भूख से अधमरे व्यक्ति को धार्मिक सिद्धांतों की घुट्टी पिलाना उसके आत्मसम्मान पर आघात करना है। नवजागरण ने भारतीय समाज में स्वतंत्रता की आकांक्षा पैदा की। अनिवार्य परिणाम के रूप में भारतीय जनता में राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाना प्रारंभ किया। जनता के अलग अलग वर्गों ने अलग अलग स्तरों पर इसके लिए संघर्ष किए जिनके समुच्चय का नाम स्वतंत्रता आंदोलन है। किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों के मुक्ति आंदोलन इसका अनिवार्य हिस्सा है। इन्हें एकताबद्ध करने में राजनीतिक स्वाधीनता के केंद्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका है। स्वतंत्रता आंदोलन ने जनता के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, जनता की शक्ति को स्थापित किया, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की भावना जगाई, जनता और राष्ट्र की स्वतंत्रता को एक माना, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र की संप्रभुता का प्रश्न केंद्रीय बनकर उभरा, समानता और सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता का एक अंग बनाया गया। कहना ना होगा कि भारतीय आधुनिकता की रचना में स्वतंत्रता आंदोलन की केंद्रीय भूमिका है। 15 अगस्त 1947 की उपनिवेशवादी प्रभुत्ता से राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही भारत ने सामंती राजतंत्र, सामंतवादी भूमि प्रबंध से मुक्ति प्राप्त की। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। इस प्रकार कई हजार साल से चली आ रही सामाजिक और धार्मिक असमानताएं और भेद सैद्धांतिक स्तर पर नकार दिए गए। वर्ण भेद, जाति भेद, लिंग भेद संविधान द्वारा अमान्य कर दिए गए। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की आधुनिकता की परियोजनाएं राष्ट्र समाज की जिम्मेदारी बनी। लोकतंत्र की अपना ने इस प्रक्रिया को गति दी। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को समाज की आंतरिक सतहों और स्तरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। जनता की आकांक्षाएं जीवित हैं और उसमें संघर्ष की शक्ति है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह प्रक्रिया स्वतंत्रता की किसी उच्चतम स्तर तक पहुंचकर ही पूरी होगी।